आगे चलते हैं, रुकू नंबर 19 है जिसमें 164 से 167 आयात हैं। टॉपिक है कायनात की निशानियां, खालिक की झलकियां, यानी अल्लाह खुद तो पर्दा गैब में है लेकिन कायनात में उसकी फैलाई हुई चीज़ों को देखकर उसको पहचान लो, ये उसका तारुफ है। इन्ना फी खल्क़ समावाती वल अर्थ, आसमान और ज़मीन की पैदाइश, रात और दिन के हेर फेर, और कश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों को लिए वे समंदरों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना, और बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख़्खर हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियाँ हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला के शरीक औरों को ठहरा कर इनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह ताला से मोहब्बत होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर ले। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाब को देख कर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, तो हरगिज़ वो शिर्क ना करते। जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे और ताबेदार लोग कहने लगेंगे, काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाएं तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं जैसे ये हमसे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला इन्हें इनके आमाल दिखाएगा, इनको हसरत दिलाने को, ये हरगिज़ जहन्नुम से नहीं निकलेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह इंसानियत को इस आग का ईंधन बनने से बचा ले और हमें उसका ज़रिया बना दे। तो इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक आयत है एक, रुकू नंबर 19 में ईमान से मुतल्लिक आयत क्या है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत में शदीद होते हैं। लिख लें, मोमिन के दिल में अल्लाह का प्यार सबसे बढ़कर होता है। देखिए, हुब हो सकती है दूसरों से, अहब नहीं हो सकती। सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, गुड, बेटर, दी बेस्ट, सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट पे अल्लाह ताला, बाकी उसके बाद में। फिर इसमें हमें पता चला कि जो लोग अकल रखते हैं वो कायनात की निशानियां देखकर भी रब का कुर्ब पाते हैं, और इसको अपोजिट भी लिख लिया, जिनको अक्ल नहीं वो कुरान पढ़कर भी अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। समझ जो नहीं आ रहा होता, अल्लाह के सिवा किसी और से अल्लाह जैसी मोहब्बत करने वाले खसारे में होंगे। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के अलावा किसी और की पैरवी की, वो क़यामत के दिन इनसे बेताल्लुक हो जाएंगे, और अल्लाह ताला हमें दुनिया में शिर्क को ख़त्म करने का जरिया बना दे। आगे है जी रुकू नंबर 20, 20 आयत नंबर 168 टू 176। टॉपिक है शैतान के कदमों की पैरवी न करो। या यूहन्ना सुकुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा, लोगों ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं इन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह पर इन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं वो कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया। आज भी लोग कहते हैं इंसेस्टर वर्शिप, आबा परस्ती, बाप दादा के तरीके, ख़ानदानी रस्म और रिवाज, नहीं, ऐसे ना किया तो ये होगा, बातें होंगी, ये होगा। अब अल्लाह ताला का कमेंट सुन लीजिए, गो इनके बाप दादा बेअक़ल और गुमराह करदा हूँ मैं, आप नहीं कह सकते, अल्लाह ने कहा, वो कह सकता है, वो जज है। कुफार की मिसाल इन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज़ ही को सुनते हैं, समझते नहीं, वो बहरे गूंगे और अंधे हैं, इन्हें अक़ल नहीं। तो दोबारा आ गई जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार आयत 172 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह लिल्लाही इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुमको रिस्क दी, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की बंदगी करते हो। दुआ कीजिए इस आयत पे अमल करते हुए अल्लाह ताला हमें आज से ही हर मशकूक चीज़ से भी दूर कर दे। शुबे वाली चीज़ दा मा युरीबिक इला मा ला युरीबिक, उसको छोड़ दो जिसमें शक है और उसको ले लो जिसमें शक नहीं। फिर आगे एक और आपके नाम पुकार, या अय्युहल्लज़ीना मनु, ऐ ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं इन्हें खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम खास इसी की इबादत करते रहो। तुम पर मुर्दार और बहा हुआ खून, यानी फ्लोटिंग ब्लड जो होता है, और सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम लिया गया हो, जिस पर दूसरों का नाम पुकारा गया हो, हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए और हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो, इस पर इनके खाने में कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे ना बात करेगा ना इनको पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्या पता चला ईमान से मुतल्लिक आयत रुकू नंबर 20 में 172, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। इस पे जुमला लिख लीजिए, बेहतरीन तोशा अल्लाह का डर है। तोशा कहते हैं वो बर्तन, वो सैक कह लें, जिस फूड बैग कह लीजिए, बच्चों को स्कूल में जाते हुए या शौहर को काम पे जाते हुए जो तोशा, जो टिफ़िन देते हैं ना, उसके ऊपर ये जुमला लिख लीजिए कि बेहतरीन तोशा अल्लाह का डर है। इत्तकुल्लाह मिन हैसु, जहाँ भी हो अल्लाह से डरते रहो, जहाँ भी जाओ। अब इस पूरे रुकू में शिर्क की बात थी, कैसे गैर अल्लाह के सहारे मकड़ियों के जाले थे, तो जुमला लिखिए कि शिर्क होता क्या है। जज्बाते अबूदियत की तस्कीन के लिए अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को रब बनाना। याद रखिए, बाय डिफॉल्ट इंसान कमज़ोर है, और कमज़ोर बंदे को सहारा चाहिए होता है। जैसे बेल सॉफ्ट होती है, उसको एक दरख्त का तना चाहिए जिस पे वो खड़ी कर दी जाए, या किसी दीवार के साथ खड़ी कर दें। बंदा अपने वजूद में उस बेल से भी कमज़ोर है, और अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं। दरख्तों को बनाने वाला रब, जब एक कमज़ोर बंदा अल्लाह के सहारे पे खड़ा हो जाता है, वो भी खड़ा हो जाता है, वो भी नाकाबिले तस्खीर हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर बंदा ईमान वाला है, सबसे ज़्यादा अल्लाह को प्यारा जो लगता है वो ईमान की ताकत वाला बंदा लगता है। तो क्या पता चला, फेथ इन एक्शन, हलाल और पाकीज़ा खाना, बाप दादा की गलत रसूमात की पैरवी नहीं करनी, और हर किस्म के हराम से बचना है इंशाल्लाह। बोलिए, और जब पेट से हराम निकलेगा तो इंशाल्लाह आप उसका फ़र्क भी ज़िंदगियों में देखते हैं। आगे जी रुकू नंबर 21, 171 से 182, असल नेकी क्या है। इस आयत को 177 को आयते बिर भी कहते हैं। लैसल बिर्रन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिकि वल मग़रिब। इसमें अल्लाह ताला ने आपको मुझे क्या पैगाम दिया। 175 से ये रुकू शुरू हो रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को गुमराही के बदले और अजाब को मग़फ़रत के बदले खरीद लिया। ये लोग आग का अजाब कितना बर्दाश्त करने वाले हैं। इन अजाबों का बस यही है कि अल्लाह ताला ने सच्ची किताब उतारी, और इस किताब में इख्तलाफ करने वाले यकीनन दूर के खिलाफ में हैं। सारी अच्छाई और बुराई, यानी सारी अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने में ही नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, और फरिश्तों पर, किताब इलाही पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद कराबतदारों, यतीमों, मिसकीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, गुलामों को आज़ाद कर दे, और नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे। जब वादा करे तब इसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख, दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। आप नोट कर रहे हैं इस बारे में कितना सब्र का जिक्र है, क्योंकि काम बहुत बड़ा मिला। आप किसी को भी कोई काम दें, फिर आप तसल्लियाँ देते हैं, देखो बेटा सब्र करो, थोड़ी दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। स्कूल जाने वाले बच्चे से लेके शादी की हुई बच्ची जिसकी शादी की, या वो लड़का जो नया नया बिजनेस खड़ा करे, हमेशा आप अपने छोटों को तसल्लियाँ देते हैं। और अगर आप कोई मेंटोर हैं तो आप हमेशा अपने साथियों को तसल्ली, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। ऐसे ही होता है, लोग मुख्तलिफ होते हैं, गलत नहीं होते। तसल्लियाँ ना, मुझे इस पारे को पढ़ाते वक्त बिल्कुल वो तसल्लियाँ महसूस हो रही हैं। तो इसमें या अय्युहल्लज़ीना की पुकार लगी 178 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल। यहाँ से एक सामे बिर है, यानी नेकी की मुख्तलिफ किस्में। पहला पारा पूरा यहूद के लिए था जो माजी के मुसलमान थे, ये पारा टू उम्मते मुस्लिमा के लिए जो क़यामत तक के लिए एक चुनी हुई कौम है। अगर तुम इन चीज़ों पे अमल करो, मैं अगर आपको एक जुमले में कहूँ ना कि पूरे पारे में फेथ इन एक्शन क्या है, ये सारी आयतें, बिर के सारे काम कर लो, तो उनमें से एक काम क्या है, कसास का तस्कर है, ऐ ईमान वालों, तुम पर मकतूलों का कसास लेना फर्ज किया गया है, आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। हाँ, जिस किसी को इसके भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी जाए, इसे भलाई की इत्तबा करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये आसानी यानी तख़फीफ़ है और रहमा है, और इसके बाद भी जो कोई सरकशी करे, इसे दर्दनाक अजाब होगा। अक्लमंदो, कसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है, इसके बायस तुम कत्ले नाहक से रुकोगे। तुम पर फर्ज कर दिया गया कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो, तो अपने माल और अपने माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेजगारों पर यह हक और साबित है। अब जो शख्स इसे सुनने के बाद बदल दे, इसका गुना बदलने वाले पर ही होगा। वाकई ही अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानिबदारी या गुना की वसीयत कर देने से डरे, बस वो इनमें आपस में सुलह करा दे, तो इस पर गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आप ये सारे मसाइल सुन रहे हैं, कसास की बातें, वसीयत की बातें, नमाज की बातें, ये जब लोग कुरान पढ़ते हैं ऐसे ही मिलकर, तो उसमें इन बातों की क्या जरूरत पड़ती है? जो लोग सिर्फ कुरान को सवाब के लिए पढ़ते हैं या बरकत के लिए पढ़ते हैं या जिन्नात भगाने के लिए पढ़ते हैं, तो कुरान में इन सारी अमली बातों की क्या जरूरत है? अब मैं कितनों का माइंड स्टन हो रहा है इस वक्त, जो स्टनिंग कि कुरान में ये भी है, वो भी है, ये भी है। मुझे तो ऐसे लगता है कि उंगली पकड़ के अल्लाह चलाना सिखा रहा है कुरान में। इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ। आप एक मशीन लाते हैं, ये माइक आया, इस माइक के अंदर डिब्बे में से एक बुकलेट निकली, पहले इसको पढ़ लो, ये करना है इसको, ये करना है वो। ये कुरान देखिए, आपको मैनुअल ऑफ लाइफ नहीं दिख रहा, एक गाइड बुक नहीं लग रही, एक हैंड बुक नहीं लग रही आपकी मेरी डे टू डे लाइफ की, लेकिन लोग इसको समझते कितना है। असल मसला आज हमारा ये है। चलिए, इस रुकू में से 21 में तीन आयतें या अय्युहल्लज़ीना आमनू की है, ईमान से मुतल्लिक तीन आयतें हैं इसमें। कौन सी? अल बकरा 177, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताब। मैसेज क्या है कि नेकी का असल मकसद आखरत में कामयाबी है, दुनिया कमाना नहीं। फिर आयत 178 बकरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल। ऐ ईमान वालों, तुम पर कसास लेना फर्ज कर दिया गया कत्ल के केसेस में। क्या पता चला कि आखरत का खौफ बंदे को सीधा कर देता है। और तीसरी 182 बकरा आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। रोजे की बातें आ रही हैं। ये सारा कुछ हम पढ़ते हुए एक बात याद रखिए कि मोमिन की सारी जिंदगी रोजा होती है। अभी हम आयतें पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे। और साथ ही साथ मैसेज क्या है? कसास, जिसको क्या कहते हैं, डेथ पेनल्टी। आज वेस्ट ने इसको ख़त्म कर दिया और आप देखिए किसी की जान माल महफूज नहीं है। इसके बरक्स आज भी किसी हद तक अगर दुनिया के किसी मुल्क में इस्लामी सजाएं राइज हैं, तो वहाँ कत्ल के केसेस ना होने के बराबर हैं। फिर इसी तरह इसमें हमने देखा कि वसीयत को बदल देना बहुत गुनाह है। आगे देखिए रुकू नंबर 22, इसमें अब रोज़े की फ़र्ज़ियत और इसके मुतल्लिक अहकाम हैं। आयत 183 से 188, और रमज़ान से पहले, रमज़ान के दौरान इन आयात की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये है जी ईमान वालों को रब की पुकार कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। 183 बकरा। फिर इसी तरह से आप देखते हैं कि इन आयात में क्या पैगाम है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो रमज़ान का मकसद तकवा, नमाज का मकसद तकवा, कुरान का मकसद तकवा। तकवा है असल में वो ज़ादुल खैर जिसके बाद नेकियां करनी आसान होती हैं। गिनती के चंद ही दिन हैं, अल्लाह तसल्लियां दे रहे हैं, घबराना नहीं, गुजर जाएंगे। 11 महीने तुम कुछ भी नहीं खाए रखते रोज़ा, तो ये अब 1 महीने तो मुश्किल लगना ही लगना है। पहले ही रखना शुरू कर दो ताकि तुम्हें कुछ तो प्रैक्टिस हो जाए उसकी। लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो, तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले, और इसकी ताकत रखने वाले फ़दीये में एक मिसकीन को खाना दे। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे, वो इसी के लिए बेहतर है। लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोज़े रखना ही है, अगर तुम इल्म वाले हो। यहाँ देखिए मसाइल है, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल पे सौमे रमदान, फिर रमज़ान के मसाइल, तफहीमुस सुन्ना सीरीज़, प्लस साइनॉप्सिस ऑफ रमजान, बहुत कुछ मौजूद है। आप में जो सिस्टर चाहें रमज़ान के आने से पहले एक दफ़ा मसाइल को फ्रेश कर लें, ताकि आपको मसले ना पूछने पड़ें कि रोज़ा टूट गया कि नहीं टूट गया। आगे है जी असल बात जो आप और मैं इस वक्त कर रहे हैं। शहरु रमदान अल्लसी उन्जिला फीहिल कुरआन, माहे रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत की और हक को बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए इसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो इसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तुम पे बोझ नहीं डालता, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर इसकी बड़ाइयाँ बयान करो और इसका शुक्र अदा करो। ईद की तकबीरात तक मसाइल आपको इस आयत में बता दिए गए। अल्लाह अकबर, ये कुरान इतना बड़ा खजाना है। अब है जी आपके रब की पुकार किस बारे में। वैजा साल कई बादी अन्नी फ़ैनी करीब ओ जी बुदा वतदाई जादान फल यस्त जी बोली सुबहान अल्लाह वल्यू मिनू भी लाल लहुम यरशुदून। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें। यानी लोगों को कहो कि तुम ये तो कहते हो कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे, तो तुम भी तो उसके दीन को कबूल करो, तुम भी तो उसकी शरीयत को कबूल करो। मेरी बात तुम मानो, मैं तुम्हारी मानूंगा, और मुझ पर ईमान रखें, यही इनकी भलाई का बायस भी है। रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया। यहूद के रोज़ों में रात का भी रोज़ा होता था, जब खाना पीना नहीं तो शौहर बीवी का ताल्लुक भी ऐसे ही था। अब जब वो पाबंदी लगी, लेकिन कुछ लोगों से खयानत हुई, गुर्बत हुई, तो मतलब कह लीजिए कि ताल्लुक भी कायम हो गया। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा में इसको सहूलत से कर दिया कि तुम फिक्र ना करो। देखिए ये हमारा दीन है। एक जुमला अभी लिख रहे हैं, दोबारा कहीं फिर मिल जाएगा। इबादात में जो तकवा मिलता है ना, वो मुआमलात में नज़र आता है। हमारा दीन कितना बैलेंस्ड है। कल के लेक्चर में भी मैंने ये बात कहने की कोशिश की कि तीन चीज़ें मिला लें तो शरीयत का अदल आपको दिखेगा। अल्लाह ने हमें हकूकुल्ला भी सिखाए, अल्लाह ताला ने हमें हकूकुल इबाद भी सिखाए और हकूक नफ्स भी सिखाए। ये इसकी अमली तस्वीर आपको समझ आ रही है। तो हमारा दीन किसी की हक तलफी नहीं करता। लोगों को भी पूरे यकीन से बताया करें कि हम दीन पे आएंगे तो आपके हकूक पहले से ज़्यादा अच्छे अदा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने शौहर बीवी का ताल्लुक जायज़ करार दिया, बता दिया कि अब ये नहीं कि तुम मर्द हो तो बीवी इंतज़ार कर रही है और तुम मस्जिद में बैठे हुए हो और तुम कुरान पढ़ रहे हो और तुम रोज़े पे रोज़े रख रहे हो, या अगर तुम बेगम होके पढ़ पढ़ा रही हो तो अब अपने मियाँ साहब को कह दो ना 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 बस जी ना, रमज़ान है, मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी। देखिए इस्लाम इतनी पर्सनल चीज़ है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब में बयान कर है, जिसको बच्चे भी हिफ्ज़ करते, जिसको बूढ़े बच्चे जवान औरतें मर्द पढ़ते, इसलिए कि कुरान का मकसद ही है। तो लिहाजा ऐसी ज़ाहरी पाबंदियाँ लगा कर अपने घरों में तल्ही का माहौल नहीं बनाना चाहिए। और अल्लाह हम सबको हिकमतें भी अता फरमाए। फरमाया वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा खयानतों का अल्लाह को इल्म है, इसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा कर तुमसे दरगुजर फरमा लिया। अब तुम्हें इनसे मुबाशरत की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ की तलाश करने की इजाज़त है। यानी अल्लाह ने जो औलाद तुम्हारे नसीब में अपनी बीवियों के बतन से रखी है, तुम उसको हासिल कर सकते हो। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोज़े को पूरा करो। और औरतों से उस वक्त मुबाशरत ना करो जब तुम मस्जिदों में इतिकाफ में हो, ये अल्लाह ताला की हदूद है, तुम इनके करीब भी ना जाओ। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें इन लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचें। और एक दूसरे के माल नाहक ना खाया करो, ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचा कर किसी का कुछ माल जुल्म व सितम से अपना कर लिया करो, हालांकि तुम जानते हो। आपने नोट किया 183 पे रोज़ों से बात शुरू हुई, रुकू कांड किस पे हो रहा है? ना हक माल ना खाओ, रिश्वत ना खाओ। क्यों? क्योंकि मोमिन की सारी ज़िंदगी रोज़ा है। रमज़ान में हकीकी रोज़ा और गैर रमज़ान में मानवी रोज़ा है। रमज़ान में हलाल से भी रुकते हो ताकि आम दिनों में हराम से रुक सको, ये रोज़े का पैगाम है। तो इस रुकू नंबर 22 में एक आयत है ईमान के इस मुतल्लिक, उजीबु दावत दाई जादानी फल्यस्त जीबू ली वल्यू मिनू बी। 186 बकरा। इस पे एक जुमला लिख लीजिए कि दुआ बंदे का अपने रब के साथ एक राज होता है, इसलिए अपने रब को राजदारी के साथ पुकारिए, वो आपकी दुआओं को सुनता भी है और कबूल भी फरमाता है। क्या पता चला इन आयात से कि रोज़े का असल मकसद डाइटिंग नहीं है? आज आप देखिए कि लोग क्या कहते हैं, वो कौन सी डाइट है, इंटरमीडियन डाइट है रोज़ा, लेकिन आपका मकसद इंटरमीडियन दुबले होना नहीं, वो खुद ही हो जाएंगे आप अगर सही मसनून रोज़े रखेंगे तो। तकवा लेना है। दूसरी बात, रमज़ान कुरान का महीना है, कुरान का मकसद लोगों की हिदायत है और अल्लाह ताला हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता है और उसके करीब है, और मोमिन की तो सारी ज़िंदगी रोज़ा है। तो लिहाजा हमारे ईमान का तकाजा क्या है कि रोज़े रखिए, और रोज़ों का तकाजा क्या है कि तकवा हासिल कीजिए। और आखिर में जो दूसरों के माल बातिल तरीके से खाने की बात की, इसको जुर्म कहा गया। अल्लाह हमारे मुल्कों में इस बात पे अमल आसान कर दे। कहते नहीं रिश्वत के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, इतना गंदा कर दिया हमने अपना मुल्क। चलिए मिलके साफ करते हैं, एक दिन आएगा इंशाल्लाह साफ होगा, कुरान के पानी से इसको धोइए। आगे जी रुकू नंबर 23, 189 से 196। फितना कत्ल से भी सख्त है। या सलूना का नीला हिल्ला कुल ही मवाकी तो लिन्ना सिवल हज। लोग आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि ये लोगों की इबादत के वक्तों और हज के मौसम के लिए है, एहराम की हालत में और घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं है, बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी हो, और घरों में तो दरवाजों से आया करो और अल्लाह तला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामों को सीधे तरीके से करो, लड़ो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इन्हें मारो जहां भी पाओ और इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुमको निकाला। और सुनो, फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है, और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई ना करो यहाँ तक कि वो खुद तुमसे ना लड़ें। अगर ये तुमसे लड़ें तो तुम भी इन्हें मारो, काफिरों का बदला यही है। अगर ये फिर बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इनसे लड़ो जब तक कि फितना न मिट जाए और अल्लाह ताला का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, ज्यादती तो सिर्फ जालिमों पर ही है। हुरमत वाले महीने, यानी आप देख रहे हैं इकसामे बिर में अब एक से एक चीज़ आती जा रही है पूरी शरीयत की। हुरमत वाले महीने, हुरमत वाले महीनों के बदले हैं, और हुरमतें अदले बदले की हैं। जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी इसी पर इसके मिसल ज्यादती करो जो तुम पर उसने की है, और अल्लाह से डरते रहा करो, और जान रखो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो, और सलूक और एहसान करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डालो, और अपने सर न मुंडाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बान गाह तक न पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हैं या उनके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से बाल मुंडवाने पड़े तो इस पर फिदिया है, ख्वा रोज़ा रख ले या सदका दे या कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्तो करे यानी फ़ायदा उठाए, बस इसे जो कुर्बानी मुयस्सर हो इसे कट डाले। जिसे ताकत ही ना हो वो 3 रोज़े तो यामे हज में रखे, और 7 यानी 7 जब वो वापस आए, ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म इनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। लोग अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह सख्त अजाबों वाला है। आप देख रहे हैं कि हज के कुछ अरकान और कुछ कफारात बयान है, इसकी डिटेल आप किताबुल हज से सुनेंगे इंशाल्लाह। जब भी कभी हज उमरे पे जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपको फिर ये सारे मसाइल हम सिखाएंगे भी। पाकिस्तान से जो लोग इस साल भी हज पे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जोहराबाद में हमारे इंस्टीट्यूट को ऑफिशियली उन्होंने पिछले 1-2 साल से हज ट्रेनिंग का मरकज़ बनाया हुआ है, इस साल भी ट्रेनिंग हो रही है। अगर आप में से कोई उनसे फ़ायदा उठाना चाहे तो बात कर सकता है, और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह लोग हज से पहले तो सिखाते हैं। और मैंने ये सारी उम्र किसी को किताब हाथ में नहीं लिए देखा होगा, लेकिन हज उम्रे पे जाने से पहले पकड़ी होती हैं, जैसे कुछ लोग शादी से पहले 6 कलमे याद करते हैं। चलिए क्या सीखा, कि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता, और अल्लाह की राह में माल ना खर्च करना अपने आप को हलाकत में डालना है। लिखिए, अपने हाथों खुद कुल्हाड़ी मारना, ये जो माल हम बचाते हैं ना अल्लाह के रस्तों से, अल्लाह के दीन से, वो दुश्मनों के लिए हथियार खरीदने में लग जाता है। लिखिए, जो कौम कलम खरीद लेती है और लोगों के अंदर शऊर और फहम डाल देती है, उनको हथियारों पे कम खर्च करना पड़ता है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, अरबों रुपया चाहिए दुश्मनों के खिलाफ हथियार जमा करने के लिए। हमने क्या बचाया? कुछ भी ना बचा। असल बात यह है कि लोग जिहाद के लफ्ज़ के साथ डिफेंसिव हो जाते हैं। ये वही कहेगा जो कहते हैं ना जंग नहीं होनी चाहिए, उन्होंने असल में दुनिया की तारीख नहीं पढ़ी। ज़रा किसी दुनिया के छोटे बड़े मुल्क को खोलिए, उनकी हिस्ट्री, किसकी किससे जंग, किसकी किससे जंग। तो इस्लाम टेररिज्म नहीं सिखाता। हाँ, इस्लाम ये सिखाता है कि जब तुम पे कोई ज्यादती करे तो डिफेंस करो। लाल बेग को भी मारे तो वो भी जान बचाता है। तो मुसलमान लाल बेग से भी ज्यादा बेवकूफ है कि खड़ा रह के मारते रहो मुझे क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? तो ये तो एक बिल्कुल नॉन सेंस वाली बात है। अल्लाह ताला हमें कुरान के इन कॉन्सेप्ट को शरह सदर के साथ लेने और देने वाला बना दे। आगे जी, रुकू नंबर 24, 24, आयत नंबर 197 से 210। हज से मुतल्लिक अहकाम हैं इसमें। अल हज जो अशकुरु मालूमात फमन फरद फी हिन अल हज, हज की भी आप देख रहे हैं डिटेल्स आपको यहाँ ज्यादा मिल रही हैं। फमन फरद फी हिन अल हज फला रफस वला फसूक वला जिदाल फिल हज वमा तफलु मिन खैरि यालमहुल्लाह। सुभान अल्लाह। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले, वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, किनाया है शोहर बीवी के ताल्लुक की तरफ, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है, और अपने साथ सफरे हज ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है, और अक्लमंदो मुझसे डरते रहो। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मस्जिद हराम के पास जिक्र इलाही करो और इसका जिक्र करो जैसे कि इसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। फिर तुम इस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर लो, यानी जब हज अरकान हज अदा कर चुको, तो अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने अबाओ अजदाद का जिक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा। और बास लोग वो हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए हमारे रब हमें दुनिया में दे, ऐसे लोगों का आखरत में कोई हिस्सा नहीं। और बास लोग वो हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना, आप भी मेरे साथ मांग लीजिए दुआएं, पूरे सफर में हम साथ साथ मांगेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। क्या तर्जुमा है? ऐ हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें अजाब जहन्नुम से निजात दे। ये वो लोग हैं जिनके लिए इनके अमाल का हिस्सा है, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। दुनिया का हसना क्या है? हलाल और बेहिसाब। और आखरत का हसना क्या है? जन्नत और अल्लाह के चेहरे का दीदार। और अल्लाह ताला की याद इन गिनती के चंद याम यानी याम तशरीक में करो। वो दिन यानी 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाए इस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये परहेजगार के लिए है, और अल्लाह ताला से डरते रहो, और जान रखो तुम सब इसी की तरफ जमा किए जाओगे। बस लोगों की दुनिया की गरज की बातें आपको खुश कर देती हैं, यानी जब दुनियावी बातें होती हैं तो बड़े खुल खुल के बातें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह बना देता है। हालांकि दरअसल वो ज़बरदस्त झगड़ालू है। जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन पर फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है, और अल्लाह ताला फसाद को नापसंद करता है। और जब उसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो तकब्बुर और तासुब इसे गुनाह पर आमादा कर देता है। ऐसे के लिए बस जहन्नुम ही है, और यकीनन वो बदतरीन जगह है। अल्लाह बचा के रखे। और बस लोग ऐसे भी हैं, दुआ करें हम ऐसे हो जाएं, कौन जो अल्लाह की रजामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। ये है जी आपके रब का एक और प्यार भरा संदेशा मैसेज। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबी खुतुवात शैतान। दूसरी बात, क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या पता चला? सुनते हैं। ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर तुम बावजूद इसके कि तुम्हारे पास दलीलें आ गईं फिसल जाओ, तो जान लो कि अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। क्या लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि खुद इनके पास अल्लाह ताला बादल के साहिबानों में आ जाए और फरिश्ते भी और काम इंतहा तक पहुंचा दिया जाए, यानी एंड हो जाए? अल्लाह ताला ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। तो रुकू 24 की आयत ईमान से मुतल्लिक क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, 208। खूबसूरत आयत है, इसकी तफसीर सुनिए, कभी लिख लें अपने कामों में, किसी वक्त भी मौका मिला जाके ऐप से इसी सूरत से बस ये आयत खोली और सुनना शुरू कर दें। इन डेप्थ स्टडी की यूट्यूब पे भी मौजूद है सूरह बकरा, उसमें से सुन लीजिए। वो तो शायद कोई 2-2.5 घंटे की होगी, लेकिन बहरहाल जो ऐप के ऊपर है वो एटलीस्ट आपको इस आयत पे 20-25 मिनट तो मिलेंगे। क्या मैसेज है इस आयत का? अधूरी इतात की वजह से हम नेकियां तो कर लेते हैं, गुनाह नहीं छोड़ते। इज इट ट्रू? 10 नेकियां करनी आसान, एक गुनाह छोड़ना मुश्किल, क्योंकि गुनाहों के हमने नाम रखे हुए हैं ना, ये तो शौक है, ये चाव है, ये लाड है, ये गपशप है, ये दोस्तों की किटी पार्टी है, ये तो मेरा हक है। तो इस पे काम करना है इंशाल्लाह। हमने क्या फेथ इन एक्शन इस पूरे रुकू से? तकवा बेहतरीन ज़्यादे राह है। जो दुनिया की तलब रखेगा इसको दुनिया ही मिलेगी, जो आखरत की तलब रखेगा उसे साथ दुनिया भी मिलेगी। और इस्लाम में पूरे दाखिल होना मतलब क्या है? कॉल से, फेल से, अमल से, आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से। दावत आधे दिल से पकाई हो या पूरे से पकाई हो, फर्क लगता है? मैके वालों के लिए पकाएं और ससुराल वालों के लिए पकाएं, फर्क होता है? आपकी दोस्तें आ रही हैं या आपके मियाँ साहब के दोस्त आ रहे हैं, फर्क होता है? ये कुरान की क्लास में आपके घर की बातें कैसे हो रही हैं? इसलिए कि कुरान आपका है, फी ही जिक्रुकुम, आगे हम पढ़ेंगे 17वें पारे में। लोगों, इसमें तुम्हारी अपनी बातें हैं। हर बंदे को आप में से इस वक्त सुनते हो लग रहा होगा ये मेरी बातें हो रही हैं। अल्लाह अकबर।